हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयना पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयना पथगामी भव तुमे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय मा सुभद्रा जय जगन्नाथ जय राधा गिरिधारी प्रभुपाद की स्नान यात्रा महामहोत्सव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर विवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है स्नान यात्रा उत्सव में। अब सभी लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा उत्सव देखा स्नान नहीं देखा क्या? आवाज ही नहीं आ रहा है ना। भूख लगा सबको प्रसाद का व्यवस्था देखो अभिषेक के बाद प्रसाद के लिए सब लोग हाहाकार मचा रहे थे, उधर लाइन लगा रहे थे और यहाँ पे प्रवचन प्रवचन के बाद प्रसाद। चलो सुबह 8 बजे से लेके आप सब भगवान जगन्नाथ जी के लीलाओं का श्रवण करते आ रहे हैं। हाँ सुबह लाल गोविंद प्रभु, फिर बाद में परम पूज्य भीमा प्रभु जी के मुखारविंद से, फिर इन सब कथाओं को श्रवण करने के बाद भगवान जी का दिव्य स्नान यात्रा को दर्शन किए। माताएं बातें ना करें वहां पर, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा। स्नान यात्रा उत्सव, असलियत में यात्रा मीन्स उत्सव। ये स्नान यात्रा अपने आप में ही पूर्ण है, बाद में फिर से उत्सव या फिर से फेस्टिवल लगाने की जरूरत नहीं है। यात्रा मीन्स फेस्टिवल, स्नान यात्रा मतलब स्नान उत्सव। मगर हम लोग ने स्नान यात्रा उत्सव ऐसे करके लिखते हैं। यात्रा मीन्स उत्सव, यात्रा का अर्थ होता है उत्सव फेस्टिवल। स्नान उत्सव भगवान जगन्नाथ जी का भागवतम में 10वें स्कंद में पूतना की लीला में भगवान ने आंख बंद कर दिए करके बहुत सारे आचार्य ने बहुत सारे कथाएं उसके ऊपर लिख डाले। ठीक वैसे है जगन्नाथ जी ने नहाए करके उसके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है कि नहीं। ओ भगवान कृष्ण का तो ठीक है, वो कृष्ण जन्माष्टमी जन्मदिन का उत्सव जन्माष्टमी नाम है, रामनवमी जन्मोत्सव, गौर पूर्णिमा, मगर ये स्नान उत्सव है कि नहीं। जगन्नाथ जन्म उत्सव नहीं है, ये जगन्नाथ स्नान उत्सव है कि नहीं। हालांकि आज के दिन जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, पता है कि नहीं आप लोगों को, मगर उनका जन्मदिन को जन्म उत्सव के रूप में नहीं जानते लोग, स्नान पूर्णिमा स्नान उत्सव के रूप में जानते हैं। केवल उड़ीसा और बंगाल के लोग जानते थे। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय करणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में परिचित कराया जगन्नाथ जी को, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद की उड़ीसा के लोग जानते थे जगन्नाथ को, और बंगाल के लोग थोड़े बहुत जानते थे चैतन्य महाप्रभु के वजह से और उनके अनुयायियों के वजह से, मगर श्रील प्रभुपाद इस जगन्नाथ जी को या स्नान यात्रा और जगन्नाथ उत्सव को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में प्रचार किया। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, विशेष रूप से हम सब के ऊपर, हरे कृष्णा भक्तों के ऊपर। प्रभुपाद जी के लिए सबसे पहला विवाह, इस्कॉन का सबसे पहला उत्सव है कि नहीं, जगन्नाथ उत्सव ही था। तो आप सब सुबह फिर तो बीमापुर के मुख से स्नान यात्रा के बारे में बहुत सारे कथाएं सुने हैं। आप सभी लोग थे प्रवचन में, 8 लोग थे क्या? फिर भी कई सारे लोग नहीं होंगे, अभी आए रहेंगे। उन कथाओं को संक्षेप में बताकर कैसे दोनों कथाओं में समन्वय, साथ साथ में जगन्नाथ पुरी में इस उत्सव को किस प्रकार से आज के दिन मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। आज के दिन कौन सी लीलाओं को जगन्नाथ करते हैं और कुछ जगन्नाथ जी की विशेष लीलाएं जगन्नाथ पुरी में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान द्वापर युग में आए, वृंदावन में कुछ लीलाओं को किए, फिर वापस चले गए। त्रेता में आए, अयोध्या में कुछ लीलाओं को किए और फिर चले गए। या वामन रूप में आए या नरसिम्हा रूप में आए, थोड़े लीलाओं को किए चले गए। अद्यावधि अभी भी श्री भगवान अनेकों जगहों पर अपने दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, उनके नित्य भक्तों के साथ वो अभी भी लीलाओं को करते हैं। अनेकों अवतारों में से भगवान के एक अवतार है अर्च अवतार, है ना, इसको अर्च अवतार कहा जाता है। भगवान का श्री विग्रह, ये भी भगवान का अवतार है। हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर दयावश, कृपावश भगवान ने ये अर्च अवतार लेते हैं, क्योंकि हम सारे बद्ध जीवों का अभ्यास है कि हम दिव्य वस्तुओं का दर्शन नहीं कर पाएंगे इस भौतिक आंखों के द्वारा। हम केवल इन पंचभूतों से बना हुआ जड़ वस्तुओं को ही देख सकते हैं। इसी अतः भगवान स्वयं इस जड़ वस्तु के बने हुए हमारे सामने प्रकट होते हैं ताकि हम उनका दर्शन कर सकें। इसीलिए हमारे ऊपर, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपावश ही भगवान ये अर्च विग्रह का अवतार लेते हैं। तो क्या भगवान जब द्वारका में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, तभी लीलाएं करेंगे? अर्च अवतार में आके लीलाएं नहीं करते हैं? ना, करते हैं। अर्च अवतार में भी भगवान अनंत लीलाओं को करते रहते हैं, अलग अलग मनों में, अलग अलग भक्तों के साथ, अलग अलग भाव में वो अभी भी लीलाओं को कर रहे हैं। अनेकों घटनाएं हम लोग सुने रहेंगे, केवल ब्रज के या ब्रज में ब्रज के संतों के साथ की लीलाएं ही नहीं, अलग अलग जगहों में जहां कहीं भी श्री भगवान का मंदिर है, वहां पे निष्ठा के साथ अगर सेवा पूजा हो रहा है, वहां पे अगर कोई शुद्ध भक्त है, तो निश्चित रूप से वहां पे भगवान उन भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं अभी भी। आप हरेक मंदिर में जाएंगे, वहां पे वहां का लोक कथा होता है, वहां पे लोकल डिवोटीज होते हैं, और वहां के जो भगवान है स्थापित विग्रह, वहां के नजदीकी भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। आप राजापुर जाएंगे, राजापुर में हरे जगन्नाथ जी हैं, वहां उन भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, उनके पुजारी जननिवास प्रभु, पंकजांगिरी प्रभु, उन वो एक किताब लिखे हैं उन्होंने, कितने सारे दिव्य दिव्य लीलाओं को उनके साथ किए हैं, है जी नहीं। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में सदियों से जो जगन्नाथ जी कई सारे भक्तों के साथ वहां लीलाएं किए हैं। केवल जगन्नाथ ही नहीं, आप श्रीरंगम जाएंगे, वहां पे भगवान इतने बड़े विष्णु सोए हुए फिर भी वो वहां के रामानुजाचार्य और उनके पूरे शिष्यादि भक्तों के साथ लीलाओं को किए हैं। गुरुवायूर जाएंगे, वहां पे भी लीलाएं किए। कर्नाटक में वहां उड़पी जाएंगे, वहां पे भी लीलाएं किए। भले ही भगवान श्री विग्रह के रूप में है, फिर भी वो दिव्य लीलाओं को अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। लीलाएं कभी खत्म नहीं होते हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ऐसे भक्त हैं, बाकी हमारे लोकल, हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। और इन इस प्रकार की दिव्य लीलाएं करने के पीछे उन भक्तों को तो आनंद प्रदान करना और उनके साथ का भाव का आदान प्रदान तो है ही, साथ साथ में हम जैसे लोगों का उद्धार के लिए। हमारा मन हमेशा इस भौतिक संसार के इंद्रिय भोगों में लगा हुआ रहता है सदैव, मगर भगवान इस दिव्य लीलाओं को करते हैं और उन लीलाओं को सुनने पर कुछ क्षण के लिए भी हमको भगवान के बारे में हम सोच सकें, इसलिए वो दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं भगवान, ताकि हम लोग इस प्रकार की उत्सवों में भक्तों के संग में आपस में उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करें और सुनाएं और सुने, इसके द्वारा हमारे अंदर भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाए, ये भी भगवान का उद्देश्य है। चाहे भगवान कोई भी अवतार क्यों नहीं लें, चाहे वो जानवर बने, चाहे वो मछली बने, चाहे वो आधा जानवर और आधा मनुष्य क्यों ना बने, और चाहे वो लकड़ी के रूप में जगन्नाथ जी के रूप में क्यों ना बैठे, मगर हमेशा भगवान का एक उद्देश्य तो रहता ही है कि कैसे ये भटकते हुए जीवात्माएं मेरे शरण में आ जाएं, इस संसार की भोग और त्याग को छोड़कर कैसे मेरे शरण में आ जाएं, वो हमेशा इसको ध्यान देते हैं। इसीलिए इस प्रकार की दिव्य लीलाओं को करते हैं, जिसको श्रवण मात्र से ही जीवात्मा का हृदय उस प्रकार से उनकी ओर खींचा जाता है, जिस प्रकार से एक नदी समुद्र की ओर अपने आप खींचा जाता है। तो ये भगवान का हमारे ऊपर कृपा है कि इन दिव्य लीलाओं को करते हैं, उत्सवों को करते हैं, जिसके द्वारा हम उनके उत्सवों को मनाएं, उनकी लीलाओं का श्रवण करें और उनके ओर हम खींचे जाएं, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो परम सुंदर दिन है आज, दो दिन पहले या दो चार दिन पहले निर्जला एकादशी है कि नहीं, भूले भी नहीं रहेंगे, मगर जगन्नाथ जी बड़े कृपा हुए, उनके जन्मदिन पर उपवास नहीं है, भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर पीस जाते हैं 12 बजे तक, महाप्रभु के जन्मदिन पर शाम तक, नरसिंह देव के जन्मदिन पर भी संध्या तक, मगर जगन्नाथ जी के जन्मदिन पर उपवास नहीं, दबा के खाओ, मेरा स्नान उत्सव देखो, मेरा गुणगान करो, फेमस है जगन्नाथ, खुद भी खाते हैं दूसरों को भी खिलाते हैं। उनका एक खासियत यह है कि जगन्नाथपुरी में कहावत है कि जगन्नाथ हाथ कभी सूखा नहीं है, खाते खाते इतना खाते हैं, इसलिए उनका एक नाम है बड़ा भोग खिया, कभी हाथ लगभग 6 टाइम उनको भोग लगता है कंटिन्यूस बार बार, और डेली 56 काइंड ऑफ आइटम्स उनको भोग लगता है। ये 56 भोग जगन्नाथ जी से आया है, दूसरे कहीं नहीं, कृष्ण नहीं, महाप्रभु नहीं, जगन्नाथ जी 56 भोग के अधिकारी है, वहां से 56 भोग का प्रथा चालू हुआ, अभी भी प्रतिदिन वहां पे 56 प्रकार के आइटम्स भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है ना, कभी सूखता नहीं है। कई सारे खासियत है जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी का नाम हम इस्कॉन में ज्यादातर जगन्नाथ ही करके जानते हैं, मगर आप उड़ीसा जाएंगे जगन्नाथ जी के रूप में जगन्नाथ करके कम लोग बुलाएंगे, उनको कालिया करके बुलाएंगे उनको बहुत सारे लोग, कालिया पिछले कालिया बड़ा ठाकुर, चका आखिया, चका मतलब गोल गोल, आखिया मतलब आंख, जिसका आंख गोल गोल है, कालिया मीन्स ब्लैक ब्लैक है ना, बहुत सारे नामों से प्रेम से जगह पूरी के लोग, और साथ साथ में जगन्नाथ जी उड़ीसा में सब कुछ उनका बड़ा बड़ा है, जगन्नाथ जी को बड़ा ठाकुर कहते हैं, ठाकुर मीन्स लॉर्ड, बड़ा मीन्स बिग, बिग लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है कि नहीं, जगन्नाथ बड़ा ठाकुर, और उनका जो मंदिर है उसको कहते हैं बड़ा मंदिर, और उनका जो आंगन है ना ग्रैंड रोड उसको कहते हैं बड़ा दांडव, बड़ा ठाकुर, बड़ा मंदिर और ग्रैंड रोड को बड़ा दांडव, और उनका जो पुजारी है ना हेड पुजारी, अपने यहाँ पर हेड पुजारी कहते हैं है कि नहीं, मगर वहां पर हेड पुजारी नहीं, बड़ा पंडा, सब बड़ा बड़ा आखिया, बड़ा बड़ा अंक, और बड़ा भोग किया जो सबसे ज्यादा खाता है। आप बोले कि कितना ज्यादा खाता है प्रभु जी, अपने यहाँ पे जगन्नाथ जी का थाली देखेंगे ना, राधा गिरदारी प्रभुपाद जी के थाली से भी बड़ा थाली है यहाँ पे, मगर वहां पे थाली पे नहीं, जितना भी भोग बनेगा सब कुछ उनके सामने रखा जाएगा, 1,00,000 लोगों के लिए अगर भोग बनेगा सब कुछ एक साथ जगन्नाथ जी के सामने रखा जाएगा, सब में तुलसी पत्ता डाला जाएगा और उनको भोग लगाया जाएगा, खाओ। ये बड़ा भोग क्या अलग, प्रतिदिन सब कुछ भोग एक साथ सब कुछ को देख के खाएंगे वो। अंगान ये सकल इंद्रिय वृत्ति मंति, कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हो, केवल दृष्टि मात्र से सारा भोग को स्वीकार कर लेते, ऐसा बड़ा बड़ा भोग किया। और मालूम है उनका श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार ड्रेसिंग करते हैं ना हम लोग, अपना जो ड्रेसिंग होता है वो सुबह 7 बजे हमारा दर्शन आरती होता है ना, वहां पे श्रृंगार आरती कहते हैं। मगर जगन्नाथपुरी में दिन भर ऐसे सादा सादा कपड़े पहने हुए रहेंगे, रात को मेन ड्रेसिंग होता है उनका, उस श्रृंगार को कहेंगे बड़ा श्रृंगार वेशम। वो सबसे पूरा दिन भर का मेन ड्रेसिंग है, कितना बड़ा बड़ा हुआ, बड़ा बड़ा ठाकुर, बड़ा दांड, बड़ा देउल, बड़ा भोग किया और बड़ा श्रृंगार वेशम, है कि नहीं, बड़ा श्रृंगार वेशम। वो उनका जो वेश, उनका जो ड्रेसिंग है, फ्लावर का ड्रेसिंग है, ऐसे जगन्नाथ फेमस है उड़ीसा में। तो इस प्रकार से ये बड़ा ठाकुर द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उनका आज प्राकट्य दिवस है, जन्मदिन। सुबह आप लोगों ने दो कथा सुने रहेंगे, एक है भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगन्नाथ हैं, तो कृष्ण कैसे उनके हाथ छोटे छोटे हो गए, आंख बड़े बड़े हो गए, मुंह एकदम से विस्फोरित हो गया, एक वो कथा है। दूसरा किस प्रकार से ये जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया गया, दो कथाएं। पहला कथा संक्षेप में इस प्रकार है, भगवान वृंदावन मथुरा छोड़कर और द्वारका में निवास कर रहे थे, उस समय 16,108 पटरानियां उनकी रानियां थी, अत्यंत ध्यानपूर्वक सेवारत होने के बावजूद भगवान हमेशा खोए खोए रहते थे, अतः रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि महिषियों के द्वारा भगवान को निवेदन किया गया कि हे भगवान, हम इतना ध्यानपूर्वक आपकी सेवा करने पर भी आप हमेशा क्यों अन्य मनस्क रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, साथ ही साथ कभी कभी गोपी और राधा और कभी कभी यशोदा मैया करके क्यों चिल्ला उठते हैं, और ये गोपी है कौन, इस प्रकार से प्रश्न पूछी। भगवान मुस्कुराते हुए रुक्मिणी को बोले कि आप रोहिणी मैया से पूछ लेना, क्योंकि रोहिणी मैया प्रत्यक्ष दर्शी थी ब्रज लीलाओं की। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी थी, कंस की भय से नंद बाबा के पास उनको छोड़ा गया था, उनकी गर्भ से भगवान बलराम जी का जात हुआ, और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों की जो बाल्य लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन रोहिणी माता ने किया था। इवन देवकी माता के गर्भ से भगवान जन्म होने हुए थे, परंतु देवकी माता को बाल्य लीलाओं का दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, मगर रोहिणी मैया को हुआ था। इसलिए भगवान ने अपने रानियों को बोला कि तुम लोग रोहिणी मैया से पूछ लेना। सभी रानियां रोहिणी मैया से पूछने लगे। रोहिणी माता बोली कि इसमें बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक समस्या हो सकता है, कृष्ण और राम ब्रज और ब्रजवासियों से इतने आसक्त हैं कि अगर इन कथाएं उनके कर्ण में जाएगा तो उसी क्षण ये लोग ये द्वारका को छोड़कर, द्वारका के ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण को छोड़कर वो ब्रज के उस वृंदावन के लिए वो निकल जाएंगे, इसीलिए ये अत्यंत ऐसे सीक्रेट बातें हैं जो कृष्ण और बलराम नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वो लोग चले जाएंगे यहाँ से। इस प्रकार से बहुत बड़ा सा कक्ष को उन लोगों ने सिलेक्ट किया, रोहिणी माता सेंटर में बैठकर श्री कृष्ण की कथाओं को वो बताना प्रारंभ की। समस्या यह था कि गेट के पास कौन रहेगा, तो कोई भी रानी तैयार नहीं थे गेट के पास रहने के लिए, क्योंकि सबको सुनने के लिए उद्विग्नता है, तो सब लोगों का नजर गया किसके ऊपर, बेचारी सुभद्रा मैया ननंद थी, सबसे छोटी, ना भाभियों का बात को टाल सकती है और ना माँ की बात को टाल सकती है, उसको जाके खड़ा रहना पड़ा गेट पर, दोनों हाथों को फैलाते हुए वो कथाओं को वो भी सुन रही थी, सभी रानियां सुन रहे थे। फिर रोहिणी माता ये वृंदावन की ब्रज लीलाओं को कहने लगी, ब्रज की सुंदरता से प्रारंभ करते हुए नंद बाबा और यशोदा मैया के ऐश्वर्य के बारे में बतलाते हुए, ब्रज और द्वारका की तारतम्य को बताते हुए, डिफरेंस विभिन्नता को बताते हुए उन्होंने संपूर्ण कृष्ण कथा को वो कहना चालू की। और जैसे जैसे कृष्ण जन्म कृष्ण जन्म के बाद पुतना उद्धार इत्यादि लीलाओं करते गए श्री कृष्ण बड़े हुए रेंगने लगे, किस प्रकार से गाय के बछड़ों की पूंछ को पकड़ के घसीटते हुए जा रहे थे, किस प्रकार के किसी भी गोपी के पीछे अपने यशोदा मैया के भ्रम से वो रेंगते हुए जा रहे थे, किस प्रकार से शकटासुर का उद्धार किए थे, हाँ तृणावर्त को मार दिए थे, इन सारे कथाओं को बताते जा रही थी रोहिणी मैया। और इस समय कृष्ण और बलराम वहां पे नहीं थे, मगर वो रह नहीं पाए, छटपटाते हुए उस जगह पे आ गए जहां पे कृष्ण कथा चल रहा था। कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के हृदय में या वैकुंठ में नहीं रहता हूं, जहां पर मेरे भक्त मेरे बारे में गुणगान करते हैं मैं वहां रहता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त लोग गान करते हैं मेरे बारे में मैं वहीं पर रहता हूं। इसलिए वो दोनों उस राजसभा में बैठ नहीं पाए, आ गए छटपटा कर। और यहां आके देखते हैं तो उनकी लाडली सुभद्रा हाथों को फैलाते हुई ध्यान पूर्वक सुन रही है, उसका यह भी ध्यान नहीं है कि कौन आया, और ये दोनों भाई आके क्या चल रहा है अंदर, हमारे विरुद्ध कुछ तो नहीं चल रहा है, इसलिए दोनों सुनने लगे। अपने लीलाओं को सुनते 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 सुभद्रा और बलराम जी का ब्रज के विरह उत्पन्न हुआ, और भगवान कृष्ण जैसे ही गोपी और राधाओं के बारे में सुनने लगे, उनके विरह उनके अंदर तीव्रता से कि वेदना सृष्टि करने लगा। धीरे धीरे से तीनों भाई बहन के अंदर, कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया के अंदर महाभाव प्रकाश हुआ। ये महाभाव विरह का एकदम चरम सीमा है। श्री कृष्ण राधा और गोपियों की विरह में, बलराम और सुभद्रा ब्रज की विरह में, और तीनों भाई बहन ये महाभाव के स्तर में चले गए। धीरे धीरे से तीनों का हाथ संकुचित होने लगा, आंखें विस्फोरित होने लगा, और उनका ओष्ट भी विस्फोरित होने लगा, पैर दिखाई नहीं पड़ने लगे, और आश्चर्य होकर वो अपने ही लीलाओं को अपने ही कथाओं को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, और अपने आप में आश्चर्य हो रहे थे कि इस प्रकार की दिव्य लीलाओं को हम ब्रज में किए हैं, और अब वो गोपियां कहाँ हैं, वो राधा रानी कहाँ हैं, कैसे हम इतना दूर आ गए, कब मिलेंगे हम उनसे, वो ब्रज में हम कब जाएंगे, इस प्रकार की विरह से उनके अंदर महाभाव प्रकट हुआ। और तीनों कृष्ण बलराम और ये सुभद्रा मैया का ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का रूप बन गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो उस समय क्या हुआ, वो अपने नारद मुनि, वो तो किधर भी घूमते रहते हैं आप लोग को मालूम है कि नहीं, वो उनके पास मतलब परिचित कुछ नहीं है, उनका ऐसा है कि जिधर मन होगा उधर चल देंगे वो, है कि नहीं। मनयान नारद मुनि का स्पेशलिटी है, अपने हाथ में वीणा लिए हुए नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाम है, भगवान राधिका रमण का नाम लेते हुए वो घूमते रहते हैं। वो जाते जाते देखे ये क्या, ऐसा कैसा रूप है, इस प्रकार के रूप तो मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही कहीं सुना हूं ऐसा रूप, है कि नहीं। जानवर का रूप देखा हूं, भगवान जानवर बने तो वो देखा था मैंने, आधा जानवर और आधा मनुष्य बना था वो भी देखा, मछली बन गया था वो भी देखा, सुअर बन गए थे वो भी देखा, स्त्री बने हुए थे वो भी देखा, मगर ये ऐसे ये ना तो जानवर है ना मनुष्य है, इस प्रकार का अद्भुत रूप मैंने आज तक कहीं पे दर्शन नहीं किया। तो तुरंत उस स्थल पर उतर कर उन्होंने भगवान को प्रणाम करके अनंत स्तुतियों के द्वारा भगवान का गुणगान करने लगे। जैसे ही गुणगान की ध्वनि सुनी, भगवान और अपने दोनों भाई बहन वो अपने मूल स्वरूप में वापस आए। नारद मुनि, अब आप सुखने पर सुखने वाला है नहीं, हम इस रूप को देख चुके हैं, मेरा निवेदन है हे भगवान आप इस प्रकार इसी रूप में सारे जीवात्माओं को दर्शन दें, और आपके इस रूप को देखकर सब लोग धन्य हो जाएं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं जो कृष्ण कि हे नारद आपकी निवेदन को मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं, मगर ये समय आएगा कलयुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में लवण सागर के दक्षिण तट पर मैं निवास करूंगा, जो भी व्यक्ति कलयुग का जो भी बद्ध जीवात्मा इस लवण सागर में स्नान करने के बाद मेरे इस स्वरूप का दर्शन करता है भक्ति भाव से, वो निश्चित रूप से इस भाव सागर से बाहर होने के बाद वापस नहीं आएगा। इस प्रकार से जगन्नाथ जो है नारद मुनि को आशीर्वाद दिए, फिर ओ नारद वहां से चले गए। तो ये विग्रह ऐसा नहीं कि वो कोई विश्वकर्मा या कारपेंटर आधा बना के छोड़ दिया था, वो विग्रह पहले से ही नक्की हो गया था कि इसी रूप में भगवान रहेंगे, है कि नहीं। इसीलिए वो कारपेंटर जो स्वयं विश्वकर्मा थे वो इस प्रकार आधा छोड़ के चले गए थे। ये कथा तो यहाँ घटित हो गया द्वापर में। फिर वहां देखेंगे लगभग स्वयंभू मनु उनके राजसी काल में, आप सबको मालूम है ब्रह्मा जी के एक दिन में कुछ 18-19 मनु होते हैं। कितने मनु होते हैं, कितने मतलब मालूम है कुछ लोगों को, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उसमें से अभी 6 मनु बीत चुके हैं, 7वां मनु का समय चल रहा है। पहला मनु का नाम है स्वयंभुव मनु, अभी 7वां मनु है वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु कोई और नहीं, प्रतिदिन जो हम सूर्य देव को देखते हैं ना उनका लड़का है, विवस्वान के लड़के हैं ये वैवस्वत, इनका समय अभी चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु के अंदर 71 दिव्य युगास होते हैं और एक युग के, एक दिव्य युग के अंदर 4 युग होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, है कि नहीं। तो पहला मनुमंत्र के अंतर्गत स्वयंभू मनु के अंतर्गत एक कथा मिलती है। उस समय इंद्रदुम्न करके एक राजा माणव में थे जिनका अब तीव्र इच्छा हुआ था कि इसी भौतिक नेत्रों के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करना है। अपने राज्यसभा में उन्होंने अनाउंस किया मुझे भगवान जी का दर्शन करना है। उस समय एक भ्रमण करने वाले ब्राह्मण वहां पे राजा को ये इन्फॉर्मेशन दिए थे कि क्या है वो, कि अत्यंत सुदूर उड्र देश में एक नीलगिरी या नीलकंदर नामक एक पर्वत है, उसके टॉप में एक गुफा के अंदर भगवान स्वयं विराजमान है, नील वर्ण का शरीर, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभायमान, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान है, श्रीवस्त्र के साथ साथ कर्णों में मकराकृति कुंडल है। तो इन सारे वर्णनों को सुने और वो मैं वहां पे कई दिन रुक के आ चुका हूं, हे राजा अगर आप वहां जाओगे तो आपको निश्चित रूप से दर्शन मिलेगा। राजा ये सुन के बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कि चलो मेरा जीवन सार्थक हुआ कि मैं इसी जन्म में भगवान जी का दर्शन कर सकता हूं। मगर इतना कहने के तुरंत बाद वो ब्राह्मण वहां से ओझल हो गए थे। फिर राजा अपने ब्राह्मणों को भेजने के लिए प्रयास किए जगह कहां पे देखने के लिए, मगर उसमें से उनका जो कुल गुरु, हर एक राजा का एक एक कुल गुरु होते हैं, अभी भी होते हैं, अभी तो राजा नहीं है कि नहीं, अभी सब पॉलिटिशियंस होते हैं, अभी तो होना ही चाहिए कुल गुरु, मगर कुल गुरु पंडित नहीं होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, पता है ना। अभी हर एक जो पॉलिटिशियन मंत्री होते हैं, MLA MP होते हैं, उनके पास एक IAS ऑफिसर रहेगा उनको हेल्प करने के लिए। हमने वो वापसी में अलग अलग फंक्शंस के लिए कुछ कुछ पॉलिटिशियंस को बुलाने के लिए कई कई बार प्रयास किए, तो कभी कभी मैंने इंटरनेट में उन लोगों का बायोडाटा पढ़ रहा था तो देखा उन लोगों ने MLA बन के बैठे हुए हैं, उनका बायोडाटा में देखा कि मैट्रिक फेल है। मतलब लो कर लो बात, अभी ऐसा व्यक्ति राज आसन पर बैठेगा शासन तो क्या होगा। तो एक मंत्री तो एक कुलगुरु होना चाहिए जो राजा को नीति और धर्म का शिक्षा दे, जिसके अनुसार राजा अपना राज्य चलाए, ये IAS ऑफिसर ऐसे करते हैं अभी। तो जो भी है उस समय एक कुल गुरु का आदेश लिया तो उन्होंने बताया कि मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम विद्यापति, वो निपुण है परिभ्रमण करने में, वो निश्चित रूप से भ्रमण करके जगह ये जो नील माधव जहां पे हो खबर ले आएगा। विद्यापति निकल गए, विद्यापति स्वभाव से ब्राह्मण और भगवान विष्णु के उपासक थे। स्वयंभू मनु के अंतर्गत हम आशा नहीं कर सकते कि व्यक्ति दूसरा किसी का भक्त हो सकता है, है कि नहीं। वहां पे देवता और मनुष्य में उतना तारतम्य नहीं था क्योंकि देवता लोग अनायास ही ऊपर नीचे जाना आना चलता रहता था, उनको अगर विश्वकर्मा की जरूरत है तो किसी को भेजते थे, जाओ विश्वकर्मा को लेके आ जाओ, ब्रह्मा जी का जरूरत है तो राजा खुद चले जाते थे ब्रह्मा जी को लेके आने के लिए उस समय। इसलिए उनको ये साफ मालूम हुआ करता था कि द सुप्रीम लॉर्ड इज लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु ही सुप्रीम है और उनकी उपासना ही करना चाहिए। कृते ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु की ही ध्यान त्रेता युग में हुआ करता था, ना ही कोई दाढ़ी वाला डाकू का और ना ही कोई बापूजी का, है कि नहीं। वो केवल भगवान विष्णु का उपासना हुआ करता था उस समय। तो विद्यापति स्वतः भगवान विष्णु की मन में स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक माधव को देखने के रहे। जाते जाते वो उड्र देश में पहुंचे। ये उड्र देश मतलब उड़ीसा को उड्र देश कहा जाता है स्कंद पुराण में। उड़ीसा का बहुत सारे नाम पहले हो चुके हैं, अभी उड़ीसा कहते हैं, इससे पहले ओड़ीसा कहते थे, उससे पहले उसका नाम उत्कल था, और उत्कल से पहले कलिंग था, और कलिंग से पहले उस देश का नाम उड्र देश था उड़ीसा का। कुछ 5-6 बार उड़ीसा का नाम बदल चुका है। हमारे यहाँ पे बॉम्बे था, मुंबई हो गया ना, ऐसे ही हुआ रहेगा। तो उड्र देश पहुंचे, जैसे उस स्थान पे पहुंचे विद्यापति को पता लगा कि ये निश्चित रूप से वैकुंठ है, क्योंकि वहां का हरेक जीव उनको चतुर्भुज में दिखाई पड़ने लगे। हमें नहीं दिखते हैं, हम वहां पे जाएंगे तो क्या कहते मालूम है क्या, बात दिखते थे, और कंक्रीट की बिल्डिंग, बड़े बड़े पेड़ पौधे, लोग ऐसे घूम रहे हैं नदी के समुद्र के किनारे, क्योंकि हम लोग इस भौतिक चक्षु के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। कभी कभी थोड़ा साधु संत की मुखारविंद से अगर उनका कृपा हो गया हो तो सुनते समय थोड़ा सा हम लोगों ने विचार करते हैं कि हाँ दिव्य धाम भगवान का इस प्रकार से हो सकता है करके, नहीं तो हम वहां जाके केवल रिक्शा वालों के साथ झगड़ा और होटल वाले के साथ मस्त यही करते रहते हैं वहां पे जाकर। विद्यापति उस धाम में प्रवेश करने मात्र से उन्होंने देखे वहां के हरेक निवासी वैकुंठ के निवासी है, चतुर्भुज स्वरूप है। अब बृहद भागवतामृत में भी वो गोप कुमार जब जगन्नाथपुरी गया था वहां की कथा आप पढ़ेंगे तो गोप कुमार प्रवेश करने मात्र से देखा था कि हरेक व्यक्ति चार भुजाएं वाले वहां पर जगन्नाथपुरी में, वो भू वैकुंठ कहा जाता है जगन्नाथपुरी को। आपको पता है वृंदावन यहाँ पे है और एक रियल वृंदावन भी है, गोलोक वृंदावन जो शाश्वत धाम है। यहाँ द्वारका है तो एक द्वारकापुरी वैकुंठ जगत में भी है, यहाँ मथुरा है तो वहां पे मथुरा भी है कि नहीं, वहां पे नरसिम्हा भगवान का भी धाम है, वहां पे अयोध्या है, सब कुछ अलग अलग अवतारों का धाम है, मगर विशेषता यह है जगन्नाथ जी का एक स्पेशल धाम नहीं है वैकुंठ में, वो जो कुछ भी है यहीं पे है उड़ीसा में। इसीलिए वो भू वैकुंठ है। नरसिम्हा देव का रूप शाश्वत रूप में वहां पे है वैकुंठ में, अलग अलग अवतारों का वैकुंठ जगत में रूप है मगर जगन्नाथ जी का नहीं है, जगन्नाथ जी का यही है, क्योंकि जगन्नाथ जी का रूप वैकुंठ में नहीं है, यहीं पे उड़ीसा में ही है। इसीलिए उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है भू वैकुंठ। इवन कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए भी वहां पर जाता है तो जगन्नाथपुरी का एक एंट्रांस है, जिस रास्ते से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए थे, मालूम है अठरनाला करके एक जगह है, अठरनाला, अठरनाला कुछ नहीं है, वो एक ब्रिज है, नीचे से पानी जाते हैं, वो जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करने के लिए मेन एंट्रांस है। वो एंट्रांस को पार करके कोई व्यक्ति अगर जगन्नाथपुरी में प्रवेश मात्र करता है तो उस व्यक्ति का भी चतुर्भुज हो जाता है, वो व्यक्ति का भी चार हाथे हो जाते हैं, वो वैकुंठ निवासी बन जाता है, ऐसे इसी क्षेत्र महात्म्य में वर्णन है। ये जगन्नाथपुरी है। तो वहां गए, घना जंगल था और उस जंगल उस पहाड़ के नीचे एक गांव था, वो सवर जाति यानी आदिवासी लोगों के गांव, और गांव में लोग बैठ के ताश नहीं खेल रहे थे और ना ही टीवी देख रहे थे, बैठ के भागवत कर रहे थे। संध्या के समय, संध्या हो चुका था, विद्यापति बैठकर भागवत कथा सुने। कथा के उपरांत उस गांव की मुखिया, उस सवर जाति की मुखिया जिसका नाम था विश्वावसु, उन्होंने विद्यापति को आके तुरंत पूछे कि हे ब्राह्मण देव आप कहां से पधारे। गांव में कोई भी आता है ना सब लोग जान जाते हैं कि बाहर से आया है, अपने यहाँ पे कितने आते हैं जाते हैं पता नहीं चलता, अपने फ्लैट के सामने वाला फ्लैट में कौन रहेगा अपने को मालूम ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। बॉम्बे में ये मुसीबत है, गांव में अब जाएंगे किसी छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना, छोटा बच्चा भी किसी अनजान व्यक्ति को देखेगा तुरंत पहचान जाएगा ये अपने गांव का नहीं है ऐसा। तो विश्वावसु उनको पूछे, उनको सत्कार किए, सबसे पहला उनका चरण, क्योंकि ब्राह्मण थे और ये सवर जाति आदिवासी थे इसलिए उनका चरण धोए और उनको पानी दिए, उसके बाद उनको प्रश्न किए। यह अतिथि सब, अतिथि का अर्थ होता है बिन बुलाए आना, अ मतलब नहीं, तिथि मतलब समय या डेट, है कि नहीं, तारीख। अतिथि मतलब जिसका कोई डेट फिक्स नहीं होता, वो कभी भी आके पहुंचेगा, है ना, बॉम्बे की भाषा में कभी भी टपकेगा, है कि नहीं। उनको कहते हैं अतिथि, मगर बॉम्बे में कोई ऐसा आ जाएगा तो हेडेक है, हा? हम उसको सत्कार तो दूर की बात, अरे आप बिना बताए आ गए, ठीक है घर में रहिए, मुझे ऑफिस जाना है, बाद में देखता हूँ। अगर एकदम से रिलेटिव होगा तो, नहीं तो भी कहीं रहने के लिए व्यवस्था करिए, हम जाके आते हैं, बाद में मिलेंगे। जो भी है, विश्वावस उनका सत्कार किए, उनको पूछे कि आप कहाँ से और क्यों आए, तब विद्यापति ने बताया कि मैं मालव राज्य के राजा इंद्रद्युम्न महाराज का दूत हूँ, यहाँ पे नीलमाधव भगवान का निवास स्थान है, मैं उनको देखने के लिए आया, रास्ता देखने के बाद राजा को बोलूंगा, वो आएंगे। ये सुन के विश्वावस को बहुत जोर का धक्का लगा, एकदम दुखी हो गए और दुख में विभोर हो गए, और तुरंत ही उनका मुख से जो वचन निकल रहा था एकदम अधूरा अधूरा निकल रहा था, वो ये नीलमाधव, हाँ वो तो है, मगर आप कैसे, मगर वो तो एकदम घना जंगल है, पशु पक्षी रहते हैं, आप कैसे जा सकते हैं वहां पे, आप ब्राह्मण हैं, अलग अलग बहाने बनाने लगे। मगर विद्यापति बताएं कि यही मेरा कर्तव्य है, मेरे राजा का ड्यूटी निभाना, और राजा तो है ही, मगर सबसे पहला मुझे दर्शन करना है भगवान का। तो फिर विश्वावसु आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे, उनको याद आया जब भगवान उनकी सेवा ले रहे थे उस समय उनको बताए थे कि हे विश्वावसु, मैं उस दिन तक आपका सेवा स्वीकार करूंगा जब तक इंद्रद्युम्न राजा का एक दूत यहाँ पे मेरे को देखने के लिए नहीं आ जाता है। जब इंद्रद्युम्न का राजा का एक दूत आएगा, एक ब्राह्मण, वो मेरा दर्शन करेगा, यहाँ से जाएगा राजा को लाने के लिए, तब मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। राजा आते आते मैं यहाँ नहीं रहूंगा, राजा आके यहाँ पे मेरे लिए मंदिर बनाएगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, और उसके बाद मैं फिर से दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। इसीलिए तब तक आपकी सेवा की अवधि है जब तक इंद्रद्युम्न राजा का दूत नहीं आ जाता, ये याद आया। तो उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा कि ये भगवान जी का आदेश है, अत्यंत दुखी होके, क्योंकि अभी तो सेवा का अवधि खत्म होने वाला है, मगर ये भगवान जी का आदेश भी है। उस दिन रात को उनको विश्राम कराने लगे, फिर दूसरे दिन उनको लेके ऊपर गए। मतांतर में दूसरा कथा भी सुनने में मिलता है कि कहीं कहीं पे ऐसे लोगों का कहना है कि सबसे पहले विद्यापति वहां पे रहकर विश्वावसु की एक लड़की थी जिनका नाम था ललिता, उनके साथ इनका संबंध घनीभूत होने लगा, और विश्वावसु ने ब्राह्मण कुमार सोचकर अपने लड़की कन्या ललिता का विवाह विश्वावसु से किया था, और उसके बाद विश्वावसु के निवेदन से ललिता अपने पिताजी को निवेदन की कि मेरे पति को भगवान नीलमाधव का दर्शन कराइए। तो उनके निवेदन के अनुसार विश्वावसु अपने दामाद विद्यापति को नीलमाधव का दर्शन कराने के लिए ले गए थे, और वो भी एक शर्त पे ले गए थे, आंख में पट्टी बांधकर। ये दो प्रकार की कथा सुनने में मिलती है, दोनों सत्य हो सकता है, मगर कमरान में वर्णन के अनुसार और सीधा सीधा उनको लेके गए थे ऊपर। तो लेके गए, यह न प्रकार गए तो सही जगन्नाथ जी के नीलमाधव का दर्शन करने के लिए, पहाड़ के ऊपर गए, घना जंगल पार करके। सबसे पहले वहां पे एक कुंड था, वो कुंड का नाम क्या है, रोहिणी कुंड। विद्यापति देखे एक कौवा उस रोहिणी कुंड में जैसे ही डुबकी लगाया और ऊपर उठते समय कौवा नहीं था, चार भुजा वाले एक विष्णु दूत बन के ऊपर चला गया। विद्यापति बोले अभी मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा कि मुझे अभी चतुर्भुज बल के ऊपर नहीं जाने का, क्योंकि काम बाकी है कि नहीं, राजा को बताना है, यहाँ पे मंदिर बनवाना है, बहुत सारा काम है बाद में। फिर वहां पे कल्पवट का दर्शन किए, वो रोहिणी कुंड कल्पवट अभी भी है जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में, जो राइट साइड में, वो दोनों वही है। वो सब बताऊंगा कैसे वो जगह, वहां पे कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन थे उस जगह में, कहीं पे है पहाड़, कहाँ गए, सब है, मैं आगे बताऊंगा। तो वहां के बाद उन्होंने गए नीलमाधव को देखने के लिए, उस पर्वत का नाम है नीलगिरी या नीलाचल। आप सुने ना, नीलाचल निवासी जगन्नाथ कहते हैं, नीलाचल अचल मीन्स जो हिलता डुलता नहीं है, और नीलाचल मतलब नील पर्वत। वैसे है श्री श्रीनिवास निवास करते हैं शेषाचल के ऊपर, है कि नहीं, शेषाचल, वैसे ये नीलाचल है। नीलाचल में भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। नीलाचल के पर्वत के शिखर पर एक गुफा है, उस गुफा का नाम है नीलकंदर। उस गुफा के अंदर जो भगवान है, भगवान का नाम है नील माधव। वहां भगवान का दर्शन किए, अनेकों स्तुतियों के द्वारा भगवान का गुणगान किए। भगवान का दिव्य रूप अत्यंत तेजमय था, और पीताम पहने हुए थे, मकराकृति कुंडल था, शंख चक्र गदा पद्म, और उनके गले में देवताओं के द्वारा प्रदत्त किया गया पुष्पों का हार सुशोभायमान था। वो पूरे जगह एकदम से सुगंधित इसीलिए था क्योंकि देवताओं की स्वर्ग की फूलों के द्वारा बनाया हुआ माला उनके गले में पहनाया हुआ था, इसीलिए। तो इस प्रकार का दिव्य दर्शन हुआ। उसके बाद विद्यापति वहां से रिटर्न आए, रिटर्न आके भगवान का एक हार भी लेके आए थे राजा के लिए। जैसे विद्यापति श्री क्षेत्र से निकल गए, वो से जगन्नाथपुरी का जो जगह है वहां से निकल गए, वैसे ही उस दिन संध्या को सभी देवता लोग भगवान की संध्या आरती कर रहे थे, गौर आरती। वो संध्या आरती के समय ही बहुत जोर से तूफान आया, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये तूफान में समुद्र की रेती उड़ने लगी, ऊपर उठने लगी, क्योंकि समुद्र के किनारे था। धीरे 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 से चारों तरफ ये धूल भर गया और देवताओं के सामने ही भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही तूफान कम गया, तभी देवताओं ने देखा भगवान नील माधव अपनी जगह पर नहीं थे। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया, रोने लगे सभी लोग, भगवान को बुलाने लगे, प्रार्थना करने लगे। मगर फिर भगवान वहां पे शून्यवाणी के द्वारा बतलाए कि अभी मैं इंद्रद्युम्न राजा के समय पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये उस तब तक ब्रह्मा जी का 51 साल पूरा होके वो पहला 51 साल का पहला दिन चल रहा था। वो कैलकुलेशन में भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 50 साल के बाद जब 51वां साल शुरू हुआ था ब्रह्मा जी का, 51वां साल का पहला दिन, और पहला दिन मतलब एक दिन में 14 मनु आना चाहिए। 14 मनु का ये पहला मनु था, है कि नहीं, स्वयं भुव मनु। और ये पहला मनु के समय पे भी ये घटना हुआ था, समय में ही घटना हुआ था, अर्थात तब तक 50 साल खत्म हो चुका था ब्रह्मा जी का, 51वां साल शुरू हो चुका था। इसीलिए भगवान जगन्नाथ ब्रह्मा जी का 50 साल तक नील माधव के रूप में रहते हैं और आधा 50 साल तक वो जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए, विश्वावसु भी दुखी, सारे देवता लोग दुखी, पूरे उड़ीसा में अपशकुन दिखाई पड़ने लगा। सभी प्रजाओं के मन में उत्साह खत्म हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये सीन यहाँ पे, वहां विद्यापति गए मालव राजा इंद्रद्युम्न के पास। जब इंद्रद्युम्न के पास गए, वहां पे राजा इंद्रद्युम्न इन सारे कथाओं को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, और वो माला को हाथ में प्राप्त करके तो एकदम से भाव विहोर हो गए, उनके अंदर भक्ति के सारे लक्षण प्रकट होने लगा। और तुरंत उन्होंने आदेश दिया, जो भी व्यक्ति तैयार हैं हमारे साथ सुबह ही निकलना पड़ेगा भगवान जी का दर्शन करने के लिए, है कि नहीं। ये राजा का आदेश भी था, मगर उस समय प्रजाओं के लिए आदेश, वो राजाओं का आदेश तो अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते थे। सभी प्रजा मंत्री वर्गों के साथ, सैन्य सामंतों के साथ राजा इंद्रद्युम्न और नील माधव का दर्शन करने के लिए निकल गए माधव से। कई दूर का रास्ता है, और नारद मुनि भी वहां पे मिल गए थे। नारद मुनि इंद्रद्युम्न राजा के रथ दोनों मस्त भगवत कथा करते हुए भगवान के गुणगान सुनते हुए पहुंचे। रास्ते में बहुत सारे अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे, इंद्रद्युम्न राजा बहुत परेशान हो रहे थे कि इतने सारे अपशकुन क्यों दिखाई पड़ रहे, हम तो भगवान का दर्शन करने जा रहे, सब कुछ मंगलमय होना चाहिए। ये अपशकुनों का भी महत्व होता है। आप श्रीमद् भागवतम भी देखेंगे, जिस समय श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस धराधाम में अपने यह लीलाओं को बाइंड अप करके जब अपने भगवत धाम वापस चले गए थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज उनको बहुत सारे अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे कई जगहों पर इस अपशकुनों के बारे में वर्णन है, अवशकुन दिखाई पड़ रहे थे। मगर नारद मुनि उनको समझा रहे थे कि नहीं, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। अवशकुनों का कभी कभी ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि अवशकुन कभी कभी सच में अवशकुन ही हो जाते हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे उल्लू दिखाई पड़ना, बिल्ली क्रॉस करना वगैरह वगैरह होता है, एक बार हमारे वहां तो ऐसा हुआ था कि रात्रि के समय स्त्रियों को सजना नहीं चाहिए आईने के सामने, वो भी अपशकुन है। अगर कोई स्त्री सजेंगे आईने के सामने रात्रि में, तो एक फैमिली था वो रात को सज सज के कोई टूर में निकले, गाड़ी बाड़ी भाड़ा करके। सबसे पहला अपशकुन था वो रात का सज रही थी, सब गांव वाले उसको चिल्लाए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को, मगर वो सुनी नहीं। फिर आगे गए तो बिल्ली क्रॉस किया निकलते ही, वो भी सुने नहीं। आगे गए तो चलता हुआ गाड़ी के ऊपर उल्लू बैठा और वो चिल्लाने लगा, फिर भी नहीं सुने। आगे गए, फिर दो चार एक्सीडेंट भी देखे, फिर भी वो नहीं सुने। आगे गए और उनका गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ और उसमें से 10 लोगों में से कुछ 4 लोग बचे, 6 लोग मर गए थे। कभी कभी अपशकुन भी, मगर हमारे लिए, हम कृष्ण भावनामृत में हैं तो श्री कृष्ण का नाम अत्यंत परम मंगलमय है कि नहीं। हाँ, सारे अपशकुन दूर करने वाला है, परम मंगलकारी है ये। हाँ, श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण। तो ये अवशकुन दिखाई पड़ा तो राजा चिंतित हो रहे थे, नारद मुनि उनको समझा रहे थे। इस प्रकार से वो उड़ीसा के एक नदी है, नदी का नाम है महानदी। उस महानदी के किनारे पहुंचे, महानदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने स्नान इत्यादि संपन्न किए। उड़ीसा के एक राजा वहां पे ये इंद्रदुम्न राजा से मिलने के लिए आए। जब राजा इंद्रदुम्न से मिलने के लिए आए उस समय इंद्रदुम्न ने पूछा, राजा इंद्रदुम्न, क्या उड़ीसा में सब कुशल है ना? तो राजा रोते हुए बताए कि कुछ भी कुशल नहीं है, हमारे राज्य से भगवान स्वयं वो हमको छोड़ के चले गए। जैसे इस बात को सुने राजा इंद्रदुम्न, वो तुरंत ही उसी क्षण उसी नदी के किनारे मूर्छा होकर नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। क्योंकि इतना दूर से इतना उत्साह के साथ श्री भगवान दिव्य दर्शन करने के लिए वो इतना रास्ता तय करके आए थे, और यहाँ पे जैसे ही जगह पर पहुंचे जहां से वो पर्वत भी दिख रहा था, वहां पहुंच के सुन रहे हैं कि भगवान अभी अपने स्थान पर नहीं है, वो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके हैं, इसलिए तुरंत बेहोश हो गए। सभी प्रजाएं, नारद मुनि भी वहां पर थे, राजा को वहां से उठाए, उठाकर उनको नारद मुनि आश्वासना दिए और बोले कि सबसे पहले ऊपर चलते हैं पर्वत के ऊपर। पहाड़ के ऊपर जाके नारद मुनि उनको बताया कि आपको चाहिए कि यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ पूर्ति होते होते ही स्वयं भगवान फिर से आपको दर्शन देंगे और आपके आसन से पूजाओं को स्वीकार करेंगे। इस बात को सुन के कहाँ अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो नारद मुनि ने एक जगह चुना। वो जगह कौन सा मालूम है? आप लोगों ने कितने जगन्नाथपुरी गए? गुंडीचा मंदिर देखा? गुंडीचा मंदिर रथ यात्रा जहां से जाता है जहां तक, और गुंडीचा मंदिर के और थोड़ा आगे जाएंगे वहां पे एक नरसिम्हा देव का मंदिर है, उनको आदि नरसिम्हा कहते हैं। ये आदि नरसिम्हा देव का विग्रह स्वयंभू मनु के समय का है। नारद मुनि आने से पहले वो विग्रह वहां पे था। नारद मुनि बताए कि यहाँ पे स्वयं नरसिम्हा देव है। नरसिम्हा देव भक्ति विघ्नों को दूर करने वाले, इसीलिए ये जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे भगवान जगन्नाथ भगवान नरसिम्हा देव के सामने ही होना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का असुविधा ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे इसमें। इसलिए वहां पे यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ में दान करने के लिए बहुत सारे गायों को राजा इंद्रदुम्न ने इकट्ठा किए थे। वो कहां पे मालूम है? इंद्रदुम्न सरोवर करके तालाब बड़ा था, उस तालाब में वो गायों को रखे थे, और गायों के खुर से धूल उड़ते उड़ते वो तालाब बन गया था, इतना बड़ा था। अभी वो इंद्रदुम्न इंद्रदुम्न सरोवर कहते हैं उसको। तो कुछ लोग गए रहेंगे तो देखे रहेंगे उसको। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ पूरा किया राजा इंद्रदुम्न ने। अश्वमेध यज्ञ पूर्ति करते करते उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ सपने में। भगवान उनको बताए कि मैं दारू के रूप में, काष्ठ के रूप में समुद्र में आ चुका हूं, मुझे लेके आओ। सुबह होते ही उड़ीसा के कुछ लोग आके बोले, हे महाराज, बांकी मुहाण में, मुहाण में संगम स्थल, नदी और समुद्र का जो संगम स्थल होता है उसको उड़िया में मुहाण कहते हैं। बांकी मुहाण मतलब एक जगह जहां पे चक्र तीर्थ, भक्त लोग अगर जगन्नाथपुरी गए तो वहां गए रहेंगे, चक्र तीर्थ करके छोटा सा मंदिर है वहां पे। वो चक्र तीर्थ में वहीं पे वो लकड़ी सबसे पहला वहां तैर के आया था, और लकड़ी क्या था? क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु की शरीर के लोम रोम, वो एक वहां पे तैर के आया था। वहां पे इतना बड़ा सा दारू बना हुआ था, उसको वहां लेके आए एक वृद्ध कारपेंटर मिला, जिन्होंने उनको 15 दिन मेहनत करके, उन्होंने कथा जानते हैं वो, जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया। विग्रह बनाने के बाद जगन्नाथ आदेश देते हैं कि मुझे 15 दिन तक बंद करके रखो, फिर वो फिर से राजा को बताते हैं कि मेरा कलर कैसा होना चाहिए। हाँ, बलदेव जी को बताया कि वो धवल वर्ण के, शंख वर्ण के कलर होना चाहिए, सुभद्रा मैया का कलर कुमकुम वर्ण के होना चाहिए। हाँ, और अरुण, अरुण मतलब वो जो सूर्य, वो सूरज उगते हैं ना, सूर्यदेव जो कलर रहता है सुभद्रा मैया को, वो कलर होना चाहिए। और सुदर्शन जी का लाल कलर होना चाहिए, रक्त वर्ण, और मेरा श्यामल वर्ण, घना काला वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान स्वयं इंद्रदुम्न राजा को इंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाओ। राजा इंद्रदुम्न मंदिर बनाते हैं, वो पुरी का जो मंदिर है, वही मंदिर स्वयं वो मनु के समय से अभी है, ऐसा नहीं है, वो कालानुसार वो कई बार वो बदल चुका है। तो ये मंदिर बनाए, मंदिर बनाने के बाद नारद मुनि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से मेरे पिताजी के पास गया नहीं, मैं घूम के आता हूँ थोड़ा। इंद्रदुम्न राजा बोले कि रुको रुको, मुझे भी जाना है, क्योंकि भगवान बन गए, हो गए, मंदिर बन गया, अभी मंदिर का प्रतिष्ठा करना है और भगवान का स्थापना करना है वहां पे, है कि नहीं। और संसार में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी। तो इंद्रदुम्न राजा बोले कि मुझे भी जाना है, बुला के लेके आना है ब्रह्मा जी को। राजा इंद्रदुम्न कहां चले गए? ब्रह्मलोक में। मैं बताया था उस समय राजाओं ने, या यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं उनको पता रहता था, देवलोक में जाना आना उनका चलता था। ये देवता लोग तो कभी कभी उनका मारपीट झगड़ा होता था ना असुरों के साथ, उस समय यहाँ से लोगों को बुलाते थे स्वर्ग में, चलो चलो हमारे साथ लड़ाई करने का है कि नहीं। कई लोग ऐसा गए, दशरथ महाराज गए लड़ाई करने के लिए, फिर बाद में वो एक मुचुकुंद महाराज गए थे, कई सारे यहाँ के लोग गए थे देवताओं को हेल्प करने के लिए। इसलिए वो सारे लोगों को मालूम हुआ करता था देवता लोग कोई काम के नहीं है, है कि नहीं। अगर कोई कुछ काम है, मुक्ति प्रदान करने में योग्य है और मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो वो केवल मुकुंद है कि नहीं। इसीलिए वो लोग केवल भगवान मुकुंद की उपासना करते थे, दूसरे कोई देवी देवता का उपासना नहीं करते थे। ब्रह्मा जी के पास हंस गए इंद्रदुम्न महाराज, और ब्रह्मा जी को बोले कि चलो जगन्नाथ जी का स्थापना करना। जगन्नाथ, ब्रह्मा जी बोलते क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे क्यों आ गए? क्योंकि आपको अभी मालूम है क्या नीचे क्या हो रहा होगा, मेरे यहाँ का समय और तुम्हारे वहां का समय में बहुत अंतर है, अभी वहां पे कई युग बीत गया रहेगा, आप पहले चलो मैं आ रहा हूं। जब तक इंद्रदुम्न महाराज नीचे आए, तब तक इंद्रदुम्न महाराज का साम्राज्य खत्म, जीर्ण शीर्ण गुंडीचा बची हुई थी। गुंडीचा इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी, उनकी विरह में अभी बची हुई थी। वो जब मंदिर बनाए थे, कालानुसार समुद्र की रेती से ढक चुका था। एक गल्ला माधव करके एक राजा वहां घोड़े से जा रहे थे, उनके पैर में मंदिर का शिखर लगा, तो गल्ला माधव ने निकाला, देखा सुंदर मंदिर है, सोचा गणेश जी को रख देता हूँ इसके अंदर। तो इंद्रदुम्न राजा बोले कि देखो भाई, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। दोनों में मतांतर पैदा हुआ। काकभूषणी किधर घूमते घूमते वहां पहुंचे। काकभूषणी तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, भागवत सुनाते हैं, सुनते हैं, और वहां पहुंच के उनको बताया कि नहीं नहीं असलियत में इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया, जगन्नाथ जी का विग्रह का स्थापना करना है, ब्रह्मा जी भी आने वाले हैं। तब गल्ला माधव स्वीकार किए। गल्ला माधव प्रेजेंट राजा, इंद्रदुम्न महाराज पास्ट किंग, वो बहुत पहले हो चुके थे। अभी ब्रह्मा जी के इंतजार में बेचारे ब्रह्मा जी भी अपना हेलीकॉप्टर लेके आए, अभी हेलीकॉप्टर रखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए उन्होंने देखा कहाँ रखूं कहाँ रखूं। एक बहुत बड़ा सा पत्थर मिला उनको, उस पत्थर या उस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी। आप लोग गए रहेंगे ब्रह्मगिरी में, कितने लोग गए ब्रह्मगिरी? अलारनाथ कितने लोग गए? वही ब्रह्मगिरी है। वो अलारनाथ पहले नहीं थे वहां पे, केवल एक पर्वत था। ब्रह्मा जी ने देखे, अभी हेलीकॉप्टर उतारने के लिए ऊपर से आ रहे हैं, तो कुछ एक बड़ा जगह तो सही, ऊंचा जगह, वो अपना स्वान को वहां उतारे, वहां से उतर के चल के आए। भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है, भगवान के मंदिर में वाहन में बैठकर, पालकी में बैठकर नहीं जाना चाहिए, चल के जाना चाहिए। कभी कभी हम यहाँ देखते थे, तभी ये तो नहीं था इतना बड़ा महल गिरधारी जी का, वो छोटा महल में अभी भी है उधर थे, और ये ग्राउंड था, कुछ लोग गाड़ी एकदम अंदर लाते उधर उधर पार्क करते थे। कभी कभी डिवोटीज और सिक्योरिटी कहते थे प्रभु जी उधर के, नहीं इधर ही रहेगा हमारा गाड़ी, बाकी लोगों का आता है, डिवोटी स्थित है उसमें से देखा था, फिर सोच रहा था हो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि भक्ति रसायन सिंधु में भी लिखा है पालकी में चढ़कर वाहन में चढ़कर भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मंदिर तक नहीं आना चाहिए, चल के ब्रह्मा जी भी अपने वाहन को वहां रखे ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूरी पे है हलालनाथ। चल के आए तो रास्ता भूल गए, रास्ता उनको समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को। अब बताओ भगवान के माया के सामने ब्रह्मा जी क्या है। तब वहां पे एक देवी प्रकट हो गई अपने आप से, वो देवी प्रकट होकर बोलती है ब्रह्मा जी किधर जा रहे हो, यहां से रास्ता है। वो देवी का नाम पड़ा बाटा मंगला, बाटा मीन्स रास्ता, मंगला मीन्स जो रास्ता दिखाने वाली देवी, बाटा मंगला मतलब रास्ता दिखाने वाली देवी। वो अभी भी भुवनेश्वर से बाय रोड अगर आप पुरी जाएंगे, पुरी पहुंचने से बस ठीक पहले लेफ्ट साइड में एक मंदिर आता है बाटा मंगला, वो उसी रास्ते से ब्रह्मा जी गए थे, इसलिए वो देवी वहीं पे है, वहां पे प्रकट होके ब्रह्मा जी को रास्ता दिखाई थी। आए मंदिर के अंदर एक मंडप है, बहुत सारा पिलर्स है, उसको मुक्ति मंडप कहते हैं। सबसे पहला ब्रह्मा जी उस मंडप के ऊपर बैठ के यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ से सबसे पहले नरसिम्हा देव प्रकट हुए थे जो मंडप के ठीक सामने हैं। वो उनको कहते हैं यज्ञ नरसिम्हा, यज्ञ नरसिम्हा उनको प्रकट किए, उनका प्रार्थना किए, उसके बाद मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। और फिर जगन्नाथ जी का रखने के लिए जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी बने कहां थे, गुंडीचा मंदिर में। वो मंदिर गुंडीचा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि राजा का पत्नी का नाम था गुंडीचा इसे। और जगन्नाथ जी को कभी लकड़ी मिला, ये मंदिर बना नहीं था, जगन्नाथ जी का मंदिर इतना दूरी पे बनाया गया था। ये जगन्नाथ जी का मंदिर, ये गुंडीचा मंदिर, और भी बहुत बड़ा पहाड़ था वो। और ये जो रोहिणी कुंड और कल्पवट जगन्नाथ मंदिर है ना, वहीं पे पहले से था, उस रोहिणी कुंड के पास में ही मंदिर बनाया इंद्रद्युम्न महाराज ने। और ये जगन्नाथ जी का विग्रह का जो पहला कारुकाज हुआ, जो पहला आर्ट हुआ, वो हुआ गुंडीचा मंदिर में। इसीलिए गुंडीचा मंदिर को जगन्नाथ जी का जन्म स्थान माना जाता है। इसीलिए अभी भी जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा के लोग कहते हैं जगन्नाथ जी अपने मायके जा रहे हैं। सुने ये बात, मायके जा रहे हैं ऐसा सुनेंगे आप। तो वहां पे थे अभी उस गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को लाना था यहाँ पे मेन मंदिर में। और मेन मंदिर में लाने के लिए रथ की आवश्यकता पड़ा, और सांसारिक रथ नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने किसी दूत को भेजकर विश्वकर्मा को नीचे बुलाया। विश्वकर्मा तुरंत आया, विश्वकर्मा हेवनली इंजीनियर है कि नहीं, ऐसे ऐसे शब्द समझेंगे। तो ये स्वर्ग के शिल्पी थे, तो शिल्पी आए तुरंत ही रत्नों से जड़ित रथ बनाए। अभी भी रत्नों से जड़ित रथ आपको मिलेंगे कई जगह, हमने उडुपी में देखा है, उडुपी में हीरों से बना हुआ रथ अभी है, हीरों से एकदम हीराओं, कई साल लगा था उसको बनाने के लिए। एक बार गए थे आधा बन रहा था, फिर दोबारा हम जब गए तब तक पूरा हो चुका था रथ, अभी भी है। तो विश्वकर्मा ने उस रथ को बनाया, उस रथ में बिठाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वो गुंडीचा मंदिर से यहाँ लेके आए। जगन्नाथ जी को वहाँ पे ब्रह्मा जी ने वहाँ पे इस मंदिर में स्थापना किया। वो दिन था, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था, ब्रह्मा जी ने जब वहां पे स्थापना किया, तब जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज को सपने में कहते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि में मेरा जन्म होता है, इसलिए उस दिन मेरा अभिषेक करा के मेरा पूजा अर्चना करो। इसीलिए उस दिन से लेके इंद्रद्युम्न महाराज ने इस स्नान यात्रा का उत्सव प्रारंभ किया। तो जगन्नाथ मंदिर में अभी जगन्नाथ जी आ गए, ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी को अपने मंदिर में स्थापना करा दिए। अभी इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान जी को प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कोई संतान संतति ना हो। भगवान बोले कि ठीक है ऐसे ही होगा, मगर बिचारी रानी जिनका नाम गुंडीचा था वो बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि हर एक माँ को यह आशा रहता है कि संतान संतति हो। देवहूति जैसे भक्त की जब 1000 सालों तक कपिल मुनि की सेवा करने के बाद कपिल मुनि प्रसन्न होकर उनको पूछा था कि क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या मांगा था, मुझे संतान चाहिए। तो वैसे गुंडीचा माता जब दुखी हो गई तब जगन्नाथ कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम हम, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीनों आज से आपकी संतान हैं, और हर साल एक बार 7 दिन के लिए आपके घर में आएंगे, आपका बना हुआ खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए अभी भी जगन्नाथ साल में एक बार अपने रथ में बैठकर अपने माँ के घर गुंडीचा के मंदिर में जाते हैं 7 दिन के लिए। तो होल फेस्टिवल ये जो पूरा यात्रा है 9 दिन का होता है, मगर 7 दिन माँ के घर में रहते हैं, एक दिन मौसी के घर में रहते हैं और दूसरे दिन लक्ष्मी बाहर खड़ा कर देती है और 10वें दिन घर के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार से स्नान यात्रा उत्सव जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का अनेकों उत्सव होते हैं, उसमें से मूल स्कंद पुराण के अनुसार कुछ 12 मुख्य उत्सव है, मगर ओडिशा के लोक कथा अनुसार 13 मेन फेस्टिवल्स, 12 मासे 13 जातव, ऐसे उड़िया में कहावत है 12 मासे 13 जातव। तो इन सारे उत्सवों का सब शुरुआत होता है स्नान यात्रा से। स्नान यात्रा इज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, पहला उत्सव है। उड़िया में ये जो ये गिनती है किसका, महीनों का, वैशाख से चालू होता है और ज्येष्ठ मास में पहला ये उत्सव, बड़ा उत्सव होता है स्नान यात्रा। ये स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं, साल में 2 बार जगन्नाथ बाहर आते हैं, स्नान यात्रा के दिन और स्नान यात्रा में आके केवल दर्शन देके चले जाते हैं, रथ यात्रा में पूरा सिटी भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, है कि नहीं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, वो साल भर अंदर रह रहे के कंटालते, इसीलिए उसके पीछे बहुत सारा रीजन और कारण है। तो स्नान यात्रा के ये 13 उत्सवों में से सबसे पहला उत्सव है स्नान यात्रा। अभी ये तो हम सुने जगन्नाथ जी का प्राकट्य, जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा हुआ, अभी सुनिए यहाँ का स्नान यात्रा हम लोगों ने देखा है कि नहीं, कैसे यहाँ पे राधा गिरधारी के पास जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, किस प्रकार से स्नान यात्रा उनका उत्सव हम लोगों ने मनाया। अभी हम सुनेंगे पुरी में कैसे मनाते हैं लोग, जो मेन जगन्नाथ पुरी है वहां पे। जगन्नाथ पुरी में आप देखेंगे जो ये आनंद बाजार है, आनंद बाजार जानते हैं, आनंद बाजार किसके लिए फेमस है, खाली प्रसाद नहीं, राइस प्रसाद है कि नहीं, जगन्नाथ जी वहां पे राइस ज्यादा खाते हैं है कि नहीं, अन्न, तो ये अन्न, ये राइस प्रसाद के लिए फेमस आनंद बाजार, और बाजार में जाते ही आनंदित हो जाते हैं क्योंकि वहां पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल खाने के लिए मिलेगा। आनंद बाजार, आनंद बाजार की लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा सा मंडप है, जो मंडप बाहर ग्रैंड रोड को दिखाई पड़ता है, उस मंडप का नाम है स्नान मंडप, बहुत ऊंचाई पे है। जगन्नाथ जी का इंस्ट्रक्शन था, मेरा स्नान मंडप ऐसा होना चाहिए जहां से देवता लोग ही नहीं, पृथ्वी के लोग भी आसानी से देख सके मुझे, ऐसा मेरा स्नान मंडप होना चाहिए, इसलिए लेफ्ट साइड की, मंदिर के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे इतना ऊंचा वो मंडप को बनाया गया, ताकि जगन्नाथ मंडप के ऊपर जाने के बाद सब लोग आराम से पूरे ग्रैंड रोड में पीछे तक खड़े रह के जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। अभी भी इस प्रकार से होता है। तो स्नान मंडप में जगन्नाथ जी को स्नान कराने के लिए लाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में नॉर्थ गेट में, जिसको एलिफेंट गेट कहते हैं या हस्ती द्वार, उस हस्ती द्वार के लेफ्ट हैंड साइड में कुआं है, उस कुएं का नाम है गोल्डन कुआं, सोने का कुआं। कितने लोगों ने देखा ये सोने का कुआं, बस 3-4 लोग, जगन्नाथपुरी तो बहुत तो गए रहेंगे। तो हाथी द्वार लेफ्ट साइड में कुआं है, जिसको सोने का कुआं कहते हैं। ये सोने का कुआं साल भर बंद रहता है, साल में एक बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले वाले दिन इसको खोलेंगे, उसके पहले वाले दिन खोल के उसको साफ किया जाएगा, और उसके पहले वाले दिन उस कुएं में से 108 मटके में पानी पंडे लोग, स्पेशल पंडे रहते हैं उसके लिए, निकालकर अधिवास गृह यानी एक घर होता है कमरा, उस कमरे में रखेंगे, और 108 मटके में कर्पूर चंदन अत्यंत सुगंधित तैलों को डालकर उसके ऊपर नारियल, इसको श्रीफल कहते हैं, उसके ऊपर रखा जाता है, रात भर उसको अधिवास किया जाता है, वहां पर उस पानी को रखते हैं और फिर उस कुंड को ढक देते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले वाले रात्रि को संसार में जितने भी तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थ ज्येष्ठ पूर्णिमा के पूर्व दिन रात्रि के, ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब चतुर्दशी के दिन रात को, रात्रि को, उसके दूसरे दिन पूर्णिमा होगा, चतुर्दशी दिन रात को सारे तीर्थ उस कुएं में आ जाते हैं और उस कुएं से एक साथ मटके में पानी लेके अधिवास गृह में रखा जाता है, पंडित लोग लेके रखते हैं। फिर रात्रि को भगवान को ऐसी चीज जैसे रात्रि का भोग इत्यादि होता है, बड़ा श्रृंगार वेश होता है, फिर शयन दी जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह का नित्य कर्म इत्यादि खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने उस स्नान मंडप को पहले वाले दिन ही उसके ऊपर टेंट इत्यादि बांधे हुए रहेंगे फेस्टिवल के लिए और उसके उसको धोएंगे, उसको धो पखाड़ कहते हैं, उड़िया में एक सेंटेंस है, धो पखाड़ मतलब उसको धोना, उसको धोएंगे उस स्नान मंडप को सभी लोग। फिर जगन्नाथ जी को सुबह का मंगल आरती, मंगल भोग इत्यादि करने के बाद तीनों का ड्रेस चेंज करेंगे, बलदेव, जगन्नाथ, सुभद्रा और सुदर्शन जी का, और उनको लेकर आएंगे कहां पे, स्नान मंडप में। और जगन्नाथ जी को मंदिर से स्नान मंडप लाने का भी एक उत्सव है, उसको कहते हैं पहंडी विजय। सुने ना आप लोग इस बात को, पहंडी विजय कहते हैं। किसको? जगन्नाथ जी को यहां पे भी लाए रहेंगे, मंदिर से यहां तक लाए ना, ठीक वैसे मंदिर से स्नान मंडप तक लाने का जो मार्ग है या जो प्रोसेशन है उसको पहंडी विजय कहते हैं। ये पहंडी विजय दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं ढाड़ी पहंडी और एक दूसरा कहते हैं गोटी पहंडी। अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार से होता है, इसको पहले समझना चाहिए थोड़ा सा। जब ही पहले जगन्नाथ जी को लाएंगे यहां रख देंगे, फिर जाएंगे बलदेव जी को लेके आएंगे रखेंगे, या सुभद्रा को, फिर जाएंगे बलदेव जी को लेके आएंगे, एक एक को रख के दूसरे को लेके आएंगे, उस समय कहते हैं गोटी पहंडी। और जब भी पहले सुदर्शन, फिर बलराम, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ लाइन से उठ के पीछे पीछे चलते आएंगे, उनको कहते हैं धाड़ी पहंडी। ये पहंडी मीन्स कुछ और नहीं, उड़िया में पाहुंडा मतलब स्टेप, पहंडी विजय मतलब वो एक एक स्टेप धीरे धीरे एक एक कदम हुए चलने के उत्सव को पहंडी विजय कहते हैं और कुछ नहीं। तो जगन्नाथ जी का एक एक स्टेप चलने का जो ये जो दृश्य है उसको पहंडी उत्सव कहा जाता है। तो स्नान यात्रा के समय पे धाड़ी पहंडी होता है, धाड़ी पहंडी मतलब पहले सुदर्शन उठेंगे, उसके पीछे पीछे बलदेव जी, उसके पीछे पीछे सुभद्रा मैया और उसके पीछे जगन्नाथ, तीनों लाइन से आ जाएंगे स्नान मंडप पर। जैसे ही स्नान मंडप में आ जाएंगे तीनों, और तीनों को सबसे पहले पुजारी एक रुमाल लेके आएगा, पूरा मुंह को पोछेगा, शरीर को पोछेगा, क्यों बताइए, पसीना हो गया रहेगा जगन्नाथ जी का फिर उसको नीचेगा, फिर उनका आरती होगा, फिर उनको भोग लगेगा, फिर उनका ड्रेस चेंज होगा, फिर अभिषेक का ये जो स्नान उत्सव का समय शुरू होगा उस समय का। और जगन्नाथ जी जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कीर्तन करते हैं, जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते हैं। वहां पे उड़ीसा के लोग क्या कहते हैं मालूम है, मणिमा हो मणिमा करके चिल्लाते हैं पंडित लोग जगन्नाथ जी के सामने मणिमा मीन लॉर्ड भगवान, हे भगवान, भगवान आ रहे हैं। आपको मालूम है, आप सिनेमाओं में सीरियल्स में देखे रहेंगे, जब भी राजा आते हैं ना तो चिल्लाता एक व्यक्ति है ना, ओ राजा अधिराज है कि नहीं, पधार रहे हैं, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, राजा आके फिर सिंहासन में बैठने के बाद सब लोग बैठेंगे, ठीक वैसे जगन्नाथ है ना, सारे राजाओं को भी राजा है, इसीलिए उनके सामने एक व्यक्ति चिल्लाते हुए आएगा, मणिमा हो मणिमा मणिमा आ रहे हैं, तो सब लोग एकदम से चिल्लाएंगे मणिमा मणिमा करके, फिर जगन्नाथ जी का एंट्री होगा, फिर उनका पोछा होगा, फिर फिर 108 घड़ों से पूरे पानी को लाके वहां रखेंगे जगन्नाथ जी के सामने 35 घड़ों के साथ, बलदेव जी के सामने 32 घड़ों के साथ, सुभद्रा के सामने 30 घड़ों के साथ और सुदर्शन जी के सामने 18 घड़ों के साथ इस प्रकार से सजा के रखेंगे। हुआ ना समान 108 होना चाहिए, 35, 32, 30 और 18। तो सजा के रखेंगे, रखकर वहां पे पुजारी बहुत सारा आत्मन और पूजा विधियों को समर्पण करेगा और बहुत सारा विधि है वो करने बाद जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन को वो ठंडे ठंडे पानी वो बहुत कोल्ड रहेगा एकदम, क्योंकि साल भर वो ढका हुआ रहता है कुआं, सनलाइट तो उसके अंदर गिरने का है नहीं और सारे तीर्थ उसके अंदर आके मिले हुए हैं, इसलिए पानी एकदम से फ्रीज में रखने जैसा एकदम से ठंडा रहेगा। कई सारे भक्तों का अनुभव भी है जगन्नाथ जी का, वो ऊपर स्नान करते समय बाहर कभी कभी छिटक के वो पानी गिरता है, ऐसे उड़ीसा में बहुत वहां पे मारा मारी होता है, किसी के ऊपर एक बूंद अगर गिर जाए जगन्नाथ जी का पानी तो कोई कोई ऐसा हंस जाता है कि वो पानी एक बार गिर जाता हमारे ऊपर तो कभी बीमार नहीं रहेंगे मगर भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान के शरीर के श्रीअंग को स्वच्छ करने वाला जल की बूंद अगर हमारे इस जड़ शरीर के ऊपर गिरता है तो हम निश्चित रूप से पवित्र हो जाएंगे, इस प्रकार के आशा से वहाँ पे भक्त लोग बहुत छिना शक्ति करते हैं। तो तीनों भाई बहन और सुदर्शन जी को वहाँ पे बहुत नहला देते हैं, इतने नहलाते हैं कि बेचारे बीमार गिर जाते हैं जैसे आप लोगों ने यहाँ नहलाया। तो इस प्रकार से स्नान यात्रा और भी बहुत सारे चीजें उसमें बताया गया है विधि इत्यादि, मगर उसको संक्षेप में बताया। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। उसके बाद जगन्नाथ जी का हस्ती वेश होता है कि नहीं, अचानक जगन्नाथ जी का एक सुंड आएगा, सुंड है कि नहीं, अपने यहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन किए रहेंगे आप लोग है कि नहीं, हाथी वेश में जगन्नाथ आप सब सुने रहेंगे इस कथा को, हर साल इस कथा को हम लोग सुनते हैं है कि नहीं, सुनने से भी जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि जगन्नाथ कभी अपने अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी वेश बन जाते हैं, ये ताम हम प्रपदम से ताम सते हो जामे हम है कि नहीं। एक बार एक भक्त थे कर्नाटक के, उसका नाम था गणपति भट्ट, वो गणेश जी का उपासक नहीं थे और ब्रह्म का उपासक थे, कुछ भक्त लोग उनको गणेश जी का उपासक करके कहते हैं, गणेश जी का उपासक नहीं वो ब्रह्म के उपासक थे, मगर उनका एक भ्रांति ये था कि ब्रह्म मतलब उनका सुंड होना चाहिए ये उनका भ्रांति था, वो गणेश का उपासक नहीं थे, ब्रह्म का उपासक थे, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण में पढ़े थे कि वो शिक्षेत्र में स्वयं परम ब्रह्म निवास करते हैं, तो जो भी व्यक्ति एक बार दर्शन करता है उसका मुक्ति हो जाता है। तो खास करके जो ब्रह्म के उपासक हैं, आप सब जानते रहेंगे तीन प्रकार के भगवान के उपासक होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से, तीन प्रकार के लोग हैं जो भगवान को उपासना करते हैं। ब्रह्म के रूप में जो लोग उपासना करते हैं उन लोगों का इच्छा क्या रहता है, जो ये जो तेज है लाइट वाला नहीं ब्रह्म का ब्रह्म का जो तेज है उस तेज में लीन हो जाओ है कि नहीं, प्रवेश कर जाओ, या ब्रह्म के सामने जाते हैं हम उस तेज में मिल जाएंगे फिर हम वापस नहीं आएंगे, ये उन लोगों का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट ये गणपति भट्ट का भी था, इसलिए गणपति भट्ट जब वहां गया जगन्नाथपुरी के वो अठरनाला के पास जाके देखा कुछ लोग वापस आ रहे हैं हंसते खेलते, बोला कि भाई तुम लोग वापस किधर से आ रहे हो, नाम भगवान का दर्शन करके आए परम ब्रह्म का, परम ब्रह्म का दर्शन करके वापस कैसे आ सकते हो, ब्रह्म का दर्शन करने से उसमें तो लीन हो जाना चाहिए था, इसका मतलब झूठ है वहां पे ब्रह्म नहीं है, तो क्या शास्त्रों में गलत लिखा है क्या। फिर उन्होंने अपना ग्रंथ को लेके आए थे खोल के देखे, नहीं शास्त्र में तो लिखा है यहाँ पे है करके, और ये लोग तो वापस आ रहे हैं ब्रह्म में लीन नहीं हो रहे हैं, बहुत सरदर्द हुआ, घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, इधर ब्रह्म में लीन होने के लिए आया, तो अभी ब्रह्म भी नहीं है यहाँ पे, अभी मैं 20 में मर गया तो उधर जाने से अच्छा इधर ही आत्महत्या करके मर जाऊं। तो जब आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रहे थे तब एक ब्राह्मण आके बोला कि कर क्या रहे हो, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि घर द्वार संपत्ति सब छोड़ दिया ब्रह्म में लीन होने के लिए। इधर आके देख रहा हूँ ब्रह्म भी नहीं है। तो उन्होंने बोला तुमको कौन बोला ब्रह्म नहीं है, ना देखो ना ये सब वापस आ रहे हैं। तो वापस आ रहे क्या मतलब, ना शास्त्र में मैंने आज तक जो सुना पड़ा ब्रह्म के सामने जाते ही व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। ये ब्रह्म का साक्षात्कार है, ब्रह्म का साक्षात्कार अर्थात हमें लीन होना, और ये लोग तो वापस आ रहे हैं। तब उनको ब्राह्मण समझाते हैं, देखो जो व्यक्ति ब्रह्म के सामने जो इच्छा करता है ब्रह्म उनको प्रदान करते हैं। कोई उनके अंदर लीन होने की इच्छा करेगा तो वो लीन हो जाएगा। कोई अगर ये इच्छा से आएगा कि मेरा घर द्वार अच्छा चले, मेरे को अच्छा गाड़ी बंगला मिल जाए और मेरे परिवार अच्छा हो जाए, तो उनको वो सब मिलेगा और वो खा पी के मस्त अपना बैग बैग लेके वापस जा रहा है अपने घर में। अगर वो प्रदान नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति का जो ब्रह्म के प्रति का निष्ठा और उसका स्वतंत्रता का हानि होता है। तब उसके दिमाग की घंटी बजी, हाँ ये सही बात है, हाँ ये सही है। फिर उन्होंने अंदर गए, सेम स्नान यात्रा का दिन था, भगवान मंडप के ऊपर बैठे हुए थे, वहां पे जाके देखे सब लोगों ने जय जगन्नाथ कर रहे हैं, यहाँ जाके वो हाथ भी नहीं उठाए। बोले कि ये कैसा ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब उनका सुंड होना चाहिए, उनका एक कॉन्सेप्ट ऐसे उसका दिमाग में आगे कर, ब्रह्म मतलब तो सुंड होना चाहिए उसका। वापस आ गए, फिर से वापस आ गए तो फिर तुरंत भगवान जगन्नाथ किसी भक्त के द्वारा उनको बुलाए भेजे, जाके उस भक्त को गणपति भक्त को बुला के लेके आओ, उसको बोलो तुम्हारा ब्रह्म को देखने आओ। तो फिर जब ये बुलाने गया तो उसने बहुत चिल्लाया ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण मुझे ठग के वापस भेजा था, तुम फिर से बुलाने आए हो, नहीं नहीं आप जो ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हो, जो सुंड के बारे में आप सोच रहे हो, वापस अभी आके दर्शन कर सकते हो। तभी वो आके देखते हैं तो वहां पे जगन्नाथ बलदेव जी का जो है सुंड बन गया था, हस्ती वेश। इस प्रकार से बहुत सारा तड़पा वेश, हस्ती वेश, सुना वेश, राजा वेश, रुक्मिणी हरण वेश, काली दमन वेश, ऐसे अनेकों वेश होते हैं जगन्नाथ जी का। डेली 6 प्रकार के वेश होते हैं जिसको नित्य वेश कहते हैं, और कुछ स्पेशल ड्रेसिंग होते हैं अलग अलग दिनों में, उसको स्पेशल ड्रेस, उसमें से एक है ये हस्ती वेश। और वहां पे वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हर साल स्नान के बाद हे भगवान आप इसी रूप में सभी भक्तों को दर्शन दीजिए। इसलिए जगन्नाथ अभी भी वो हस्ती वेश में और सभी लोगों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार से ये हस्ती वेश होता है, आप लोग ये हस्ती वेश को देखें। इसके बाद आज के दिन हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए भी एक विरह का दिन है। आज का जो दिन है हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक अत्यंत विरह का दिन है। ये विरह का अनुभव सारे गिरधारी के भक्त कर सकते हैं, है कि नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि हाँ वापी में भी जगन्नाथ जी, वहां पे जगन्नाथ जी बीमार नहीं गिरते हैं। हम भी उनको नहलाएंगे शाम को, मगर आप लोग जितना प्रेम से और इतना पानी से नहलाते हैं ना उतना नहीं नहलाते हैं, क्योंकि हम अपने फ्लैट के अंदर वो बंगलों के अंदर थोड़ा नहलाएंगे थोड़ा पानी से, उसमें बुखार नहीं आता है उनको, तो साल भर हमको दर्शन देते हैं। इसलिए ये विरह आप लोगों के लिए है। तो सारे गौड़ीय वैष्णव आज विरह में है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सभी लोगों को भूख लगा, इसलिए एक 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 धीरे 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 श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा सुन के अस्त में, और एक सुंदर कथा भी था पास टाइम जगन्नाथ जी का, वो बताएंगे। नहीं वो तो परेशान हो जाएंगे। कुछ 5 दिन का जगन्नाथ कथा भी है, कुछ लग रहा बोर्ड आप लोग आ सकते हैं सुनने के लिए, 2-3 दिन हम आएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, उनके संन्यास के बाद सबसे ज्यादा समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में निवास किए। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए जगन्नाथपुरी एक विशेष स्थान है। हमारे लिए श्री जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम और वृंदावन 3 मुख्य तीर्थ स्थलियां हैं हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए। श्री वैष्णवों के लिए कांचीपुर, तिरुपति और श्रीरंगम, ये 3 मुख्य तीर्थ स्थल हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा का ये उत्सव का बहुत आनंद लेते थे, और स्नान यात्रा के बाद जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी को अण अवसर गृह, एक घर बनाते हैं लकड़ी से टेम्पररी हाउस, उसको कहते हैं अण अवसर गृह, स्नान व्रत में स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी को लेके चले जाएंगे किधर, अनावसर गृह में, मेन टेम्पल में नहीं लेंगे, उस लकड़े के घर के अंदर बंद के उसमें रखेंगे। और पूजा पाठ कौन करेंगे मालूम है आपको? मालूम है वो कथा जो विद्यापति और विश्वावसु, विश्वावसु सवर जाति का था आदिवासी, वो आदिवासी के परंपरा से चलते आने वाले कुछ आदिवासी अभी भी है जो लोग ये 15 दिन भगवान जी का सेवा करेंगे, उनको दैतापति कहते हैं, वो लोग उनकी सेवा करेंगे ये 15 दिन। तो अभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण विरह विदुर। कृष्ण स्वयं है मगर वो कृष्ण राधा की भाव को अंगीकार करते हुए श्री कृष्ण की विरह को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है कृष्ण विरह विदुर। और श्री जगन्नाथ कौन है? राधा विरह विदुर। श्री जगन्नाथ स्वयं कृष्ण ही है मगर वो कौन से मूड में है अभी? ओ राधा कहाँ है आप, है कि नहीं? राधा के विरह में है, एकदम आश्चर्य में है कि मेरे राधा कहाँ, सुदूर वृंदावन चली गई और मैं कैसे उनको मिल पाऊंगा, ऐसे उनके विरह में है। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है मगर राधा रानी के कलर और राधा रानी के भाव को लेते हुए कृष्ण विरह विद्रह, वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और ये राधा राधा कर रहे हैं, है कि नहीं? देखो कैसे उनकी लीला, दोनों सेम व्यक्ति है, वो भी कृष्ण है ये भी कृष्ण है मगर वो अपने ही विरह में है और ये राधा के विरह में है। फिर इन दोनों के मिलाप होता है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के सामने है। और जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु को देख के, उनके भावावेश को देख के सोचते हैं कि अभी राधा रानी और गोपियां मेरे सामने हैं और मैं उनके साथ अभी मस्त जा रहा हूं, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो स्नान यात्रा के बाद जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की इस प्रकार के विरह को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार सहन नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार ब्रज में वृंदावन में रास उत्सव के समय पे श्री भगवान कुछ समय के लिए जब अंतर ध्यान हो चुके थे उस समय सारे गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे। राधा और गोपियां सब लोग ढूंढने लगे थे कहां चले गए श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, हर एक वृक्ष को पूछ रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं, आपस में श्री कृष्ण के लिए को याद कर रहे हैं। एक बार कृष्ण ऐसे चले गए थे और जाके एक जगह चार हाथ वाले बनके खड़े हो गए थे कृष्ण, चतुर्भुजा वाले विष्णु बनके खड़े हुए थे, सब गोपियां उधर जा रहे दंडोत मार के पूछ रहे हैं, पूछते हैं नारायण जी कृष्ण को देखे क्या? नारायण बोलते हमने नहीं देखा। फिर गोपियां वहां से चले जाते हैं, राधा रानी जाती है वहां पे प्रणाम करके बोलती है नारायण, क्योंकि नारायण कहते समय उनका वो दो हाथ ऊपर था ना, वो गायब हो गया अपने आप से। कृष्ण राधा रानी के सामने चार पूजा वाले बन के नहीं रह पाए, उनके दो हाथ ऐसे ही ओझल हो गया, वो सिंपल कृष्ण बन गए। मतलब कृष्ण के राधा के सामने कृष्ण का कुछ नहीं चलता है, कोई माया नहीं चलता है। ठीक वैसे अभी वही जो वृंदावन में ब्रज में जो रसलीला के समय का जो श्री कृष्ण गोपियों के साथ इस प्रकार की छुपने की जो लीला किए थे, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जगन्नाथपुरी में फिर से उस लीला को स्थापन, मतलब उस लीला को फिर से कर रहे हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी स्वयं राधा रानी है राधा रानी के भाव में और जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है। अभी स्नान यात्रा के तुरंत बाद नहा धो के गायब हो गए, ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी बिचारी राधा रानी बाहर तड़पने लगी ढूंढने लगी कहां गए मेरे श्री कृष्ण, और चारों तरफ भटकने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु की मेरे कृष्ण कहां है, कृष्ण 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 करके, और इस प्रकार से चिल्लाते चिल्लाते जंगलों में दौड़ने लगे जिस प्रकार से गोपियां जंगलों में दौड़कर और ढूंढ रहे थे कृष्ण को, ऐसे उस जंगल में दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचे जाके अलारनाथ में पहुंचे। अलारनाथ में भी भगवान विष्णु का विग्रह है चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म के साथ श्याम वर्ण के, वहां पे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम से कृष्ण के विरह से उनका शरीर एकदम दग्धीभूत हो रहा था। ये विरह वेदना अत्यंत दर्दनाक है, इसको सहन कर पाना अत्यंत कठिन। अभी उस स्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह का बातें, तो इस प्रकार के विरह वेदना में उनका शरीर एकदम से जलन हो रहा था उनके शरीर में। और जैसे ही अलारनाथ के सामने गए, अलारनाथ का दो आंखें, दो हाथे हैं गायब हो गए, वो श्याम सुंदर बन गए। और वहां जाके देखते हैं तो मेरे श्याम यहाँ पे हैं, और तुरंत वहां पे श्याम सुंदर को प्रणाम करने के लिए वो नीचे गिर के प्रणाम किए। और जैसे ही प्रणाम किए, उनकी शरीर की उस तेज से, हाँ उसकी वो ताप से, वो जो पत्थर था जिसके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रणाम किए थे, वो चारों तरफ पिघल गया। उठा हुआ पत्थर अभी भी कितने लोगों ने दर्शन किया अलारनाथ में, वो पिघला हुआ। तो इस प्रकार से सारे गौड़ीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग ये अण अवसर के समय वहां पे निवास करते हैं, अलारनाथ का दर्शन करते हैं, वहां पे कीर्तन भजन इत्यादि करते हैं, सारे गौड़ीय वैष्णव वहां पे चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए स्नान यात्रा जो विरह उत्साह के साथ साथ विरह का भाव ले आता है कि फिर से 15 दिनों तक हमारे जो प्राण प्रिय जगन्नाथ हैं वो हमें दर्शन नहीं देंगे। मगर आप लोग चिंता मत करिए, कभी भी आप लोगों को विरह सताएगा ना, ट्रेन पकड़ के वहां ही आ जाइएगा, वहां पे दर्शन देंगे जगन्नाथ आपको। नहीं तो गिरधारी है ही, उनके चार हाथ नहीं है, दो ही है, लेकिन वो दयालु हैं, भक्तों की इस विरह वेदना को समझ कर वो गिरधारी और राधा और गिरधारी यहाँ पे निवास करते हैं, ताकि भक्तों को उतना विरह ना हो, दुख नहीं देना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु इस अण अवसर के समय पे वो वहां निवास। अच्छा, ये अण अवसर का समझना चाहिए, अण मतलब नहीं, अवसर मतलब, अवसर मतलब क्या है, टाइम। अण अवसर मतलब टाइम नहीं, मेरे पास अवसर नहीं है। तो ये अण अवसर मतलब भगवान कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए, हम सबको कहते हैं, मगर मेरे तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मगर मेरे पत्नी के लिए टाइम है। उनको बाल में है कि साल भर अभी सभी भक्तों का दुखों को सुना, क्योंकि वहां पर तो ऐश्वर्य भाव में है, द्वारकाधीश के मूड में है, राजा के भाव में है, कंटिन्यूसली रात तक, देर रात तक, सुबह से लेके हजारों लाखों संख्या में दर्शनार्थी आते हैं वहां पे, लाइन वाइन भी नहीं, एक साथ घुस के दर्शन करते हैं, सबको एक साथ जगन्नाथ जी अपने आंखों से आशीर्वाद देते हैं, हाथों से नहीं देते हैं, आंखों से आशीर्वाद देते हैं, और लक्ष्मी जी को समय नहीं, और रात को तो पंडित लोग सुला देते हैं। और कुछ दिनों के बाद ब्रजवासी आके मुझे खींच के ले जाएंगे ब्रज में राधा और गोपियों के पास। अभी यहां द्वारका में जो लक्ष्मी है ऐश्वर्य भाव से जो सेवा करती है, उनको अगर मैं संतुष्ट नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से ये मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। इस भाव को ध्यान में रखते हुए श्री जगन्नाथ इस प्रकार के एक लीला को प्रकट किए। अपने पत्नी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए स्नान यात्रा के बाद आप बुखार का एक नाटक करते हैं जगन्नाथ, और वो आप उस टाइम को कहते हैं कि अण अवसर, मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए, मगर ये अण अवसर लक्ष्मी जी के लिए नहीं है। और सच में थोड़ा सा बीमारी का तो नाटक करते ही फिर देवी लक्ष्मी 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर तरीके से सेवा करती है, उनके साथ वो समय बिताते हैं। सेवा करते 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 कुछ पंद्रह चौदह दिन के अंदर लक्ष्मी जी देखती है कि अभी धीरे से भगवान उनका बुखार उतर चुका है, तो लक्ष्मी 15 दिन तक जागी हुई रहती है तो आंख लग जाता है। लक्ष्मी आंख खोल के देखती है तो तीनों भाई बहन घर में नहीं है, तीनों को तीनों चंपट बाहर ढूंढती है, कहीं पे नहीं मिलते हैं, बहुत परेशान है। एक दो दिन के बाद और उस मंदिर के अंदर आप लोगों ने देखा रहेगा बिमला देवी का मंदिर है, दूतों को पूछ के खबर लगाती है कि वो कहीं गए हैं ब्रज में। बिमला देवी को जाकर राधा लक्ष्मी पूछती है कि हे माता, आप तो वहां यहाँ पे पुराने हैं, और आप मुझे बता सकते हैं क्या मेरे स्वामी कहाँ पे हैं? मैंने सुना कोई राधा गोपियों के पास गए हुए हैं, मैं उनको अपने बस में कैसे रखूंगा, है कि नहीं। हर एक पद वहां पे बिमला देवी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती है, बहुत सुंदर एक लोकल एक स्थानीय ग्रंथ में वर्णन मिलता है। बिमला देवी बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्मी माता को समझाती है, एक लौकिक ज्ञान देती है कि एक स्त्री किस प्रकार से अत्यंत चालाक और पटु होना चाहिए कि अपने पति को अपने बस में रखने के लिए, अपने पति को अपने बस में रखने के लिए स्त्रियों को यह न कहे न प्रखारे न हो, उसको अपने बस में रखना चाहिए, बाहर जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे वो लक्ष्मी जी को विमला देवी समझाती है, क्यों विमला देवी कौन है मालूम है, स्वयं पार्वती शिव जी की पत्नी है कि नहीं, वो लक्ष्मी को समझाती है क्योंकि ये गोपियों के पास चले गए इस बात को सुने इसीलिए, और समझा के उनको कहती है कि देखो मैं कुछ आपको देती हूँ, वो लेके जाओ और लेके जाके वहां पे उनके ऊपर डालोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे वो आ जाएंगे। तो लक्ष्मी पांच दिन में रथ यात्रा के पांचवें दिन हेरा पंचमी उस समय वो सब कथाएं हैं। चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर तरीके से हेरा पंचमी का वर्णन होता है। हाँ, और वो लक्ष्मी इस प्रकार से जगन्नाथ जी को वापस लाने के लिए जाती है। तो रथ यात्रा होता है ये 15 दिनों के बाद। रथ यात्रा के अंतिम दिन में भी बहुत सुंदर कथा है किस प्रकार से लक्ष्मी जगन्नाथ जी को अपने घर के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं देती है, बहुत देर तक दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और ये सारे कथाएं हैं जो हम ये जो कुछ 3-4 दिन का जगन्नाथ जी का कथा है उस समय में इस जगन्नाथ जी के लीलाओं को और सुंदर तरीके से सुनने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, स्नान यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आते रविवार को प्रसाद बनाने और वितरण करने की सेवा विशेष लक्ष्मी दत्त प्रभु और कृष्ण देवा प्रभु के आंशिक रूप द्वारा की जाएगी। आते रविवार को विशेष प्रोग्राम जो लव फीस्ट होता है जो दीक्षित भक्तों के लिए और जो दीक्षित में वेटिंग है जो दीक्षा लेना चाहते हैं उन भक्तों का विशेष प्रोग्राम आते रविवार को भक्ति हॉल में लव फीस्ट होगा 1 बजे से 2 बजे तक। जो दीक्षा लिए हुए हैं आते रविवार को वहाँ लव फीस्ट में आए।